और आइए अर्पा रेडियो पर अब सुनते हैं कार्यक्रम भेंट मुलाकात योगेश के साथ।
श्रोताओं जय जोहार, आप सुन रहे हैं अर्पा रेडियो 90.8 FM। मैं हूं योगेश और आपके साथ कार्यक्रम भेंट मुलाकात को लेकर हाजिर हूं। आप जानते ही हैं कि भेंट मुलाकात की सीरीज में हम अंग्रेजी विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं SCERT रायपुर यानी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर छत्तीसगढ़ की सहायक प्राध्यापक सुश्री आई संध्या रानी, जिनसे हम बहुत सारे सवाल कर रहे हैं और वे सारे सवाल हमारे श्रोताओं में जो शिक्षक हैं उनके द्वारा आए हैं। वो शिक्षक अपनी अंग्रेजी पढ़ाने की प्रैक्टिसेस में बहुत सारी समस्याएं पाते हैं और उन समस्याओं का समाधान वे संध्या जी से चाहते हैं। ये प्रोग्राम हमने इसीलिए डिजाइन किया है कि हम अंग्रेजी विषय में आने वाली बहुत सारी कठिनाइयों को किसी एक्सपर्ट के माध्यम से दूर करें। संध्या जी, आपका पुनः एक बार स्वागत है और आपकी अनुमति से मैं इस कार्यक्रम का प्रश्न लेता हूँ।
हेलो
हेलो, नमस्कार, मैं योगेश बोल रहा हूँ अर्पा रेडियो से, आपका स्वागत है। कृपया अपना नाम बताएं एवं अपना प्रश्न रखें।
मैं धीरेन्द्र पाठक बोल रहा हूँ बिलासपुर से
जी।
और मेरा क्वेश्चन मैडम जी से अंग्रेजी से विषय से संबंधित यह प्रश्न है कि जब भी हम कक्षा में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो अपना उच्चारण शिक्षक जब करता है, लेकिन बच्चे उसको सुनने के बावजूद भी उस क्वेश्चन का यदि उनको राइटिंग करने को दिया जाए तो उसका सही तरीके उसको लिख नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी जेन्युइन समस्या ये आती है। अंग्रेजी में कई शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण अलग होता है और उसका स्पेलिंग अलग आती है
जी।
तो बच्चों को हम इसको कैसे सिखा पाए
जी? बहुत अच्छा सवाल है धीरेन्द्र जी आपका। तो मैं बिल्कुल समय न गंवाते हुए आपका सवाल सीधे सीधे मैडम जी की ओर प्रेषित करता हूँ।
स्पेलिंग एंड साउंड के बीच कोऑर्डिनेशन या कोरिलेशन कैसे स्थापित करना है
जी?
एक्चुअली ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। हिंदी में जैसे हमारे पास जितने लेटर्स होते हैं उतने साउंड्स होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जब ये इंग्लिश पे आता है तो इंग्लिश में नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ साउंड्स जो है वो डिफरेंट है। 26 लेटर्स 44 साउंड्स के लिए यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एवरी लेटर वोंट हैव अ स्पेसिफिक साउंड। हर एक लेटर के लिए एक पर्टिकुलर साउंड नहीं होगा। अगर हम साउंड सिस्टम को देखते हैं, ये तो हमारे पास 26 लेटर्स हैं, लेकिन साउंड्स की बात करते हैं तो 44 साउंड्स को अगर हम वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में कैटेगराइज करते हैं तो वो 24 कॉन्सोनेंट्स और 20 वॉवेल्स होते हैं। जबकि अल्फाबेट में हम देखते हैं तो 21 लेटर्स होते हैं, 5 वॉवेल साउंड्स होते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि 21 लेटर्स जो हैं वो 24 साउंड्स को रिप्रेजेंट करती है और इसी तरह 5 साउंड्स जो हैं 20 साउंड्स को रिप्रेजेंट करती है वॉवेल। इसको और अगर हम अंदर जाके देखते हैं तो ये समझ में आता है कि ये जो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है उसको अगर हम देखते हैं तो इसमें से हम 18 साउंड्स जो है वो जिस लेटर के लिए है वो लेटर दिखाता है। जैसे है प ब ट ड क ग फ व स ज ल म न र य व, ये 18 साउंड जो है इनके अपने अपने लेटर्स हैं। लेकिन जो 6 साउंड्स और इसमें आते हैं, यानी 18 + 6 24 हो रहा है
जी,
वो 6 साउंड्स के लिए अपने स्पेसिफिक लेटर्स नहीं है। जैसे TH है जो हम th the के लिए यूज करते हैं, वैसे CH है जो हम श के लिए यूज करते हैं, एज इन चेयर। श य है जैसे शिप है, उसके लिए श साउंड है जो हम SH से रिप्रेजेंट करते हैं। साउंड है जैसे लीजर प्लेजर, वो हमारे पास उसका पर्टिकुलर एक लेटर नहीं है। और लास्ट ऑफ ऑल उंग, जैसे सिंग रिंग एनजी साउंड, उसको हम यूज करते हैं बट एनजी लेटर्स यूज करते हैं बट इसका अपना स्पेसिफिक साउंड नहीं होता है। तो ये 6 साउंड्स जो है वो हमारे लिए 2 लेटर्स यूज करके हम करते हैं। अगर ये लेटर्स के वर्ड्स आते हैं तो हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जनरली जो प्रॉब्लम बच्चों को होती है वो वॉवेल साउंड्स में होती है, जो कि हमारे पास 5 वॉवेल लेटर्स जो है वो 20 साउंड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसमें हम कोई कोऑर्डिनेशन या कोरिलेशन करके बता दें कि बच्चों को ये होगा, लेकिन अगर हमारे बच्चे इसमें मिस्टेक्स करते हैं तो उसका हम एक ही निराकरण कर सकते हैं। नॉर्मली जब वोकैबुलरी पढ़ाते हैं तो हम 3S फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पेलिंग, साउंड और सेंस का। स्पेलिंग तो हम जानते हैं क्या है, साउंड यानी हम प्रोनंसिएशन की बात करते हैं और सेंस यानी मीनिंग की बात करते हैं। नॉर्मली जब भी हम क्लास में वोकैबुलरी पढ़ाते हैं तो हम केवल मीनिंग पे ही ध्यान देते हैं, साउंड और स्पेलिंग को उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो वोकैबुलरी पढ़ाते समय अगर मैं मीनिंग पे ही ध्यान देती हूँ तो 1/3 ऑफ द वोकैबुलरी ही मैंने पढ़ाया, 2/3 मैंने अब नहीं पढ़ाया। यानी इसका मतलब ये है कि स्पेलिंग और साउंड पे भी हमें उतना ही ध्यान देना है जितना हमें मीनिंग पे देना है। दूसरी बात ये है कि अगर हम साउंड पे ध्यान देते हैं तो बेसिकली हमारी प्रोनंसिएशन सुधर जाएगी। बट दूसरी बात यह है कि स्पेलिंग सुधारे कैसे, एक तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होगी, दूसरा ये है कि हमारे आंखों के सामने से वो वर्ड जितने बार जाएगा वो वर्ड उतना एस्टैब्लिश होगा। देयर शुड बी एसोसिएशन बिटवीन साउंड एंड स्पेलिंग। वो एसोसिएशन जब टीचर पढ़ाता है तो वर्ड की स्पेलिंग पे बार बार बच्चों की नजर ले जाए, बच्चों को कंसंट्रेट करवाए स्पेलिंग की ओर। हम जब भी बताते हैं तो एप्पल बताते हैं तो हमारे समय ये दिखाते हैं एप्पल का पिक्चर और एप्पल, कभी भी हम ये नहीं करते कि नीचे जो APPLE लिखा है उसके ऊपर भी हम दर्शाएं अपने फिंगर्स या जो भी है, बच्चों का ध्यान वहां भी केंद्रित करें कि वो बच्चा वो स्पेलिंग को रीड कर सके, रीड कर सके यानी उस स्पेलिंग के इमेज को पहचान सके। भले ही वो APPLE एप्पल नहीं पढ़ रहा है लेकिन उसकी शेप को वो समझ सके। जैसे एक बेसिक सा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कोई हमें पूछता है इस पर्टिकुलर, जैसे रिसीव ही है जो थोड़ा सा स्पेलिंग में मुश्किल होता है हम लोगों को, तो कोई पूछता है इसका स्पेलिंग क्या है तो हम ये बोलते हैं ये है। फिर कोई पूछता सही में ये है तो हम बोलते हैं एक बार लिख के बताते हैं। इसका मतलब वो लिख के बताते हैं का मतलब ये है कि हम ये देखते हैं कि हमारे आंखें जो है उस स्पेलिंग को पहचानती है, इसीलिए हम बता सकते हैं ये सही है, नहीं तो फिर बोलते हैं नहीं कुछ तो गलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये इमेज को पहचानने की बात है। ये पहचान हमारे बच्चों में भी हमें स्थापित करना होगा। जब भी हम वोकैबुलरी डील करते हैं तो हमें उस स्पेलिंग के थ्रू बच्चों को बार बार ले जाना पड़ेगा ताकि बच्चे उस चीज को पहचान सके, उस वर्ड की स्पेलिंग को भी पहचान सके। और साथ में जब हम इसके होमवर्क देते हैं या टेस्ट देते हैं या एक्सरसाइज देते हैं तो भी हम यही करते हैं कि मीनिंग की ही प्रैक्टिस करवाते हैं। हम प्रैक्टिस भी स्पेलिंग्स का कराएं, जब तक हम ये नहीं करेंगे हमारे बच्चों की स्पेलिंग करेक्ट नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आपने गौर किया होगा तो बच्चे स्पेलिंग में मिस्टेक क्या करते हैं, वो स्पेलिंग में केवल वाल्स में मिस्टेक करते हैं, आई के बदले ई लिखते हैं, ई के बदले ए लिखते हैं, यही करते हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट्स जो 18 मैंने कहा उसमें कोई मिस्टेक उनका नहीं होता। बहुत हुआ तो सी के बदले एस लिख लिए क्योंकि दोनों की प्रोनंसिएशन कहीं कहीं एक जैसी होती है, या के लिख दी, इससे ज्यादा नहीं करते। तो अगर हम बच्चों को बार बार स्पेलिंग पे उनके ध्यान ले जाए, बार बार वो उस इमेज के थ्रू बच्चों के दिमाग में एस्टैब्लिश हो जाए तो शायद ये स्पेलिंग और साउंड की जो एसोसिएशन है बच्चे उसको समझ पाएंगे और आप जैसे ही स्पेलिंग पूछेंगे बच्चे लिखेंगे। लेकिन वही है कि जब भी आप कोई भी वर्ड को समझा मीनिंग के साथ स्पेलिंग और साउंड को भी इक्वल इम्पोर्टेंस जब तक हम नहीं देंगे ये प्रॉब्लम वैसे जैसे है वैसे बरकरार रहेगा।
मतलब मैडम हम समझ पा रहे हैं ये जो जिस सामंजस्य रिक्वायरमेंट पाठक जी कर रहे हैं वो सामंजस्य 3 बिंदुओं पर टिका हुआ है। पहला तो ये कि हमको इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा चूंकि हमारे पास वॉवल सिंबल्स कम है और वॉवल साउंड्स ज्यादा हैं अंग्रेजी में, तो हमको इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि जो वॉवल हमारे पास अवेलेबल है वो एक से अधिक जगहों पर इस्तेमाल होंगे, एक से अधिक स्वरों के लिए इस्तेमाल होंगे, हमको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और दूसरे हमको केवल अंग्रेजी के कुछ कंटेंट के कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार नहीं करना है, बच्चों को वोकैबुलरी में पारंगत करना है क्योंकि जब बहुत सारे प्रश्न होंगे तभी वो वाक्य की ओर जा पाएंगे और उस वोकैबुलरी में भी केवल अर्थ समझा भर देने से हमारा काम नहीं बनने वाला है, हमें उस उसकी स्पेलिंग और उसके साउंड्स का परिचय भी बच्चों से कराना पड़ेगा। और तीसरी मुख्य बात जो आपसे मुझे अभी समझ में आ रही है वो ये कि ये सारा का सारा मसला बिना लगातार और अनवरत अभ्यास के संभव नहीं है। तो धीरेन्द्र जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस उत्तर से संतुष्ट हो पाए होंगे।
ठीक है, थैंक यू सर, नमस्कार।
नमस्कार
मैडम, आपका इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।
अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
हेलो हेलो, नमस्कार, मैं योगेश बोल रहा हूँ अरपा रेडियो से, आपका स्वागत है। आप अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न रखें।
जी नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम पटेल है और मेरा सवाल है, अंग्रेजी में क्लास के बच्चों को कुछ अक्षर, मतलब सभी बच्चों को अक्षरों का ज्ञान किस तरह आसानी से किया जा सके।
अच्छा, मतलब घनश्याम जी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ आपका प्रश्न, आप चाहते हैं, आप स्कूल में कोशिश करते हैं, कक्षा में कोशिश करते हैं कि सब बच्चों को अक्षर ज्ञान हो जाए, लेकिन सभी को नहीं हो पाता है, तो आप ऐसी किसी प्रक्रिया या ऐसी किसी गतिविधि की जानकारी चाहते हैं जिससे हम बड़ी आसानी से सब बच्चों को अक्षर ज्ञान करा सकें।
जी सर, जी सर, हमारे क्लास में कुछ बच्चे ना छूट जाते हैं, फिर मतलब हम साथ में चलते रहते हैं, कुछ बच्चे जल्दी से समझ नहीं पाते, तो उन बच्चों को साथ में लेकर किस तरह से हम आगे बढ़ पाए, यही सवाल है हमारा।
हाँ, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। मैं आपका सवाल सीधे मैडम की ओर प्रेषित करता हूँ इसके उत्तर के लिए।
सभी बच्चे एक साथ पहचान सके और यूज कर सके, ये संभव नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चे का अपना एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में, तो हर बच्चों का सीखने की गति जो है वो अलग अलग होती है। हम ये नहीं कह सकते कि एज लेवल, ये एज ग्रुप के हैं तो ये इतने दिन में ये सीख जाएंगे। अगर हम छोटे बच्चों की ही बात करते हैं तो अगर वो बोलना भी सीखे या चलना भी सीखे तो बहुत, सभी बच्चों की अलग अलग टाइमिंग्स हो सकती है, कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता, कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख नहीं पाता। बट देन हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी हम अपनाएंगे तो शायद हमारे सब बच्चे सीख सकते हैं। सब बच्चे सीख सकते हैं ये बता सकती हूँ कि सब एक समय पे सीख जाए इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि सबके सीखने की गति अलग होती है।
जी।
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इनको, अगर क्योंकि छोटे बच्चे हैं, पहली बात तो ये है कि एक जगह हम बिठा के इनको सिखाना चाहेंगे तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं होगा, क्योंकि इनकी आदत ही नहीं है कि वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर सके और एक जगह बैठ के ये इतने 40 मिनट के सेशन में आपके साथ अटेंटिवली बैठ सके, तो मुश्किल से 3-4-5 मिनट के बाद ये इनकी अटेंशन डाइवर्ट होगी ही।
जी।
दूसरी बात है कि अगर हम इनको लेटर्स की बात करते हैं तो इनको लेटर्स की रिकॉग्निशन पे ले जाए पहले, लेटर की रिकॉग्निशन के बाद उसको लेटर के डिफ्रेंसिएशन पे ले जाए, यानी हमने लेटर को रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर 3-4 लेटर्स लेके उनको डिफ्रेंशिएट करें कि उनको समझ में आए कि ए ओ बी ई में से ए कौन सा है, ओ कौन सा है, बी कौन सा है, ई कौन सा, और ये अलग कैसे है। इस पे ले जाने के लिए, ये दोनों की बात मैं कह रही, रिकॉग्निशन और राइटिंग में इनको ले जाने के पहले, अगर हम अपनी टेक्स्ट बुक्स को ध्यान से देखते हैं पहली दूसरी के, तो आपको दिखेगा कि वहां स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंट लाइन्स, ओवल, हाफ सर्कल, फुल सर्कल, जिगजैग लाइन्स, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक में ही दी हुई है। अगर इस प्रैक्टिस को हम साइंटिफिकली सोचे तो, क्योंकि बच्चों के स्किल्स, मोटर स्किल्स की बात कर रही हूँ, तो वो स्टैंडिंग लाइन से स्लीपिंग लाइन्स में जाते हैं, स्लैंट लाइन्स पे जाते हैं, तो अगर हम इनको सिखाते सिखाते अक्षरों का भी ज्ञान देते जाए, जैसे अगर हम स्टैंडिंग लाइन्स की बात करते हैं तो आई एक है जो हम स्टैंडिंग लाइन से कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइंस दोनों सिखाने के बाद हम बहुत सारी ऐसे लेटर्स उनको सिखा सकते हैं, जैसे कैपिटल एल है, कैपिटल ई है, कैपिटल एफ है, एच है, टी है, एक्सेट्रा। तो अगर ये दो सेट ऑफ, ये दो सेट स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइंस के बाद ये 5-6-7 लेटर्स हम सिखा सकते हैं। नॉर्मली एक हमारी सोच ये भी होती है कि हम ए बी सी डी एक लाइन पे सिखाएं, ये जरूरी नहीं है कि हम ए के बाद ही बी को सिखाएं, बी के बाद ही सी को सिखाएं, बच्चा अगर हर लेटर को रिकग्नाइज करता है फिर ABCD वो जान जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बट देन अगर हम लिखना सिखाने की बात करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा है कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लैंट लाइन्स पे ले जाए। जब स्टैंडिंग, स्लीपिंग और स्लैंट लाइन्स पे जाते हैं तो उसके पास KMNWXY और Z लेटर्स, यानी ये 7-8 लेटर्स वो एक साथ सीख सकता है।
मतलब तो केवल तीन प्रकार की लाइनें सीख कर ही वो आधे से अधिक लेटर्स सीख सकता है।
जी जी। उसके बाद अगर हम ओ की बात करते हैं या सर्कल की बात करते हैं, यानी हाफ सर्कल और जिगजैग लाइंस की बात करते हैं, तो बचे हुए 5-6 लेटर्स वो इससे सीख सकता है। जैसे बी है, पी है, क्यू है, आर है, ओ है और एस है, जे है। तो ये बचे हुए 7-8 लेटर्स जो है वो ये तीन जो डिफिकल्ट बच्चों के लिए कहा जाता है कि मोटर स्किल्स को घुमाने में, ओ बनाने में, ये सर्कल बनाने में बच्चे को मुश्किल होती है, तो ये डिफिकल्ट जो है ये 4-5-6 लेटर्स जो है ये थोड़े बाद में धीरे से सीखता है। बट नॉर्मली जो लेटर्स हैं zigzag lines, slant lines, sleeping lines और standing lines वो सीख सकता है। इसके सीखने के बाद अगर हम आगे जाते हैं तो फिर डिफ्रेंसिएशन पे चले जाए, रिकग्निशन पे पहुंचा, रिकग्निशन के बाद डिफ्रेंसिएशन पे पहुंचे और इस तरह वो आगे जाएगा। तो एक मुश्किल से 25-30 डेज के टाइम इंटरवल में बच्चे इनको सीख सकते हैं, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है, आप लोग की भी पेशेंस की जरूरत है। बच्चा उल्टा लिखेगा, सीधा लिखेगा, डी को लिखेगा उल्टे तरफ से और डी को, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स उनके साथ होंगे ही, क्योंकि क्लास 5-6 इयर्स के एज के बच्चों में राइट एंड लेफ्ट को समझने में ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि उनको राइट और लेफ्ट समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी ही। तो वो बी को इधर डी के जैसे और डी को बी के जैसे लिखेगा, ये बहुत ही स्वाभाविक है उस बच्चे के लिए। तो हम थोड़ी सी पेशेंस लेके इस पे चलेंगे तो ये बच्चे सीख जाएंगे। इसके बाद अगर हम इसको एस्टैब्लिश करने के लिए गेम्स या एक्टिविटीज ले जाए तो बहुत अच्छा होगा। जैसे फायर इन द माउंटेन्स, रन 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 करे एंड बोले पिकअप ए, बहुत सारे लेटर्स ए के डाले और उसमें से ए पिकअप करने, या उनको बोले इसी को, इसी पोएम को आगे बढ़ाते हुए, इसी सॉन्ग को आगे बढ़ाते हुए बच्चों को खेल खेल में अगर अल्फाबेट सिखा दे तो रिकग्निशन लेवल पे ये हो जाएगा। आगे चल के अगर राइटिंग पे ले जाना चाहते हैं तो राइटिंग में आपको मैंने जैसे कहा स्लीपिंग लाइन्स, लैंडिंग लाइन्स की मदद लेके आप राइटिंग पे बच्चों को अल्फाबेट की तरफ ले जा सकते हैं।
तो ये जो फायर इन द माउंटेन, रन रन रन, ये इस तरह के जितने एक्टिविटीज हैं हमारी टेक्स्ट बुक में है, इंटरनेट पर अवेलेबल है और हमारी जो सपोर्टिंग किताबें हैं, बहुत सारा मटेरियल हमारे आसपास बिखरा हुआ है।
और फिर बच्चों को अगर आप चाहें तो उनके जो गेम्स हैं उन्हीं को, उनको भी कन्वर्ट करके इस तरह के गेम्स टीचर्स खुद बना सकते हैं, क्योंकि टीचर्स अभी बहुत क्रिएटिव हो गए हैं और बहुत अच्छा खुद बना सकते हैं। अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छा होगा।
जी, तो ये आप बहुत सारे एक्टिविटीज आप चुन सकते हैं। मैडम के जवाब से आपको ये प्रेरणा तो मिली ही होगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि इस संसार में आया हुआ हर एक बच्चा अपनी एक अलग इंडिविजुअलिटी के साथ है, तो हम ये आग्रह अगर हो सके तो अपने मस्तिष्क से निकाल दें कि सब बच्चों को एक साथ और एक जैसा सीखना चाहिए। सब बच्चे अलग अलग तरीके से ही सीखते हैं और हमें बहुत धैर्य के साथ उनके उस तरीके का या उनके उस पेस का सम्मान करना चाहिए। तो बहुत पेशेंस के साथ किया जाने वाला काम है भाषा शिक्षण, और जब अंग्रेजी जैसी भाषा हो जो कि हमारे परिवेश में एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तब थोड़ा हमको ज्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा, ज्यादा धैर्यवान होना पड़ेगा।
धन्यवाद घनश्याम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
धन्यवाद सर जी, धन्यवाद
मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोत्साहित करने वाले उत्तर के लिए।
थैंक यू।
संध्या जी को खूब सारा धन्यवाद देते हुए आज की बात यहाँ रोकते हैं, इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। ट्यून करते रहिए अरपा रेडियो 90.8 FM। बाय बाय।
भेंट मुलाकात योगेश के साथ। आज राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT की वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक सुश्री आई संध्या रानी के साथ योगेश ने की बातचीत। ये बातचीत फोन इन कार्यक्रम पर आधारित थी। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अंग्रेजी का पठन पाठन कैसे हो, इस विषय पर प्रश्नों के उत्तर दे रही हैं सुश्री आई संध्या रानी। इस श्रृंखला का अगला अंक सुनने के लिए सुनते रहिए अरपा रेडियो।
ये है अरपा रेडियो।